हरे कृष्णा। तो फिर भक्तों को हम स्वागत करते हैं। जैसे कि इन दिनों में हम सब भक्तों के ऊपर एक सेवा का भी भार है, जैसे कि मंदिर निर्माण कार्यक्रम चल रहा है और सभी लोग कुछ न कुछ सेवा तो कर ही रहे होंगे, कुछ लोग घर से निकल कर भी जा रहे होंगे, और इसके अलावा हम सब भक्तों को अपनी साधना मेंटेन करने की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट सेवा करनी पड़ती है। कल हम लोग गुरु महाराज के साथ थे तो एक महाराज को किसी ने फोन किया फ्रांस से, तो महाराज ने सबसे अच्छी बात उस समय से पूछी और कहा कि बात करने के बाद कि आपकी साधना ठीक चल रही है, आप 16 माला का जब पूरी तरह से कर पा रहे हैं, और साथ में कहा कि अगर आप 4 नियमों की शक्ति से पालन कर रहे हैं और 16 माला का जप कर रहे हैं तो ही मैं आपसे खुश रहूंगा, है ना। तो हम वहां बैठे थे, अब देखने में तो लगता है कि बहुत साधारण से इंस्ट्रक्शन है, और लेकिन भक्तों को चूंकि हम जैसे भक्त हैं, हम लोगों के लिए ये सेवा, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये सर्वोपरि है। और इस इंस्ट्रक्शन के पीछे भाव क्या है गुरुजनों का, कि अगर हम लोग इन 4 नियमों का पालन करते हैं तो हम लोग धर्म के 4 स्तंभों की रक्षा करते हैं। हम देखते हैं कि आज धर्म के नाम पर हर व्यक्ति अपना प्राण देना चाहता है और दूसरे के प्राण ले भी सकता है कि नहीं। कितने बड़े बड़े संगठन ऐसे जो धर्म के नाम पर अपनी जान देने को भी तैयार है और दूसरे की जान लेने को भी तैयार है, लेकिन विडंबना यह है कि इस प्रकार के मरने और मारने वाले लोगों में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्हें वास्तव में धर्म पता है। धर्म की परिभाषा आप लोगों को बताएगा क्या है धर्म की परिभाषा। साधारण सिंपल शब्दों में धर्म किसे कहते हैं, हाथ खड़ा करें बताइए। भगवान की सेवा परम धर्म है। आप कुछ कह रहे हैं, भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, भगवान को जानना, उनसे प्रेम करना, सेवा करना, प्रेम करना, सेवा करना, ये सब या फिर बोलते हैं धर्मम तो साक्षात भगवत प्रेम, कि भगवान के मुख से निकले हुए शब्द धर्म बन जाते हैं। तो वेद पुराण ये सब जो है धर्म की ही परिभाषा है जिसमें लिखा है कि धर्म कैसे जीना चाहिए। तो धर्म को बगैर जाने लोग धर्म के लिए अपने प्राण देना भी चाहते हैं और दूसरे के प्राण हरना भी चाहते हैं। इसको बोलते हैं एक इस प्रकार के लोगों का समूह जो वास्तव में धर्म नहीं जानता, धर्म से विहीन है, या फिर बोले अंधविश्वासी हैं। और इस प्रकार के ज्यादातर लोग क्योंकि धर्म नहीं जानते इसलिए प्राण देना भी जान चाहते हैं और प्राण लेना भी चाहते हैं। लेकिन हाँ, अगर दूसरी दृष्टि से देखा जाए, अगर ये बात की जाए क्षत्रियों के रूप में जिन्हें धर्म की रक्षा करनी होती थी, लेकिन उन्हें पता होता था कि धर्म क्या है और फिर सही धर्म के लिए युद्ध भी करते थे, जैसे क्षत्रिय थे अर्जुन, और उन्होंने धर्म की लड़ाई को ना लड़ने का सोच लिया था और अपने धनुर्धर होते हुए भी धनुष को नीचे रख दिया। लेकिन भगवान को उसे याद कराना पड़ा कि धर्म क्या है, एक क्षत्रिय कुल में रहकर पांडित्यपूर्ण बातें कहकर वचन कहते हुए तुम क्या करो, पंडितों जैसी बातें कर रहे। एक ब्राह्मण हो सकता है उस युद्ध में प्रवृत्त ना हो क्योंकि उसका धर्म युद्ध करना नहीं, लेकिन एक क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिए। लेकिन आजकल के समाज में क्योंकि अधिकतर लोगों को धर्म के विषय में पता नहीं, और जिस पर्टिकुलर रीति रिवाज को या अनुष्ठानों को, रिचुअल्स को, या किसी विशेष पंथ से अगर वो जुड़ा है तो उसके से जुड़ा रहने के कारण उसका एक अलग अहंकार होता है उसको लेकर, उसका मान सम्मान या धर्म के प्रति मान सम्मान, और उसके प्रति अपनी जान भी देना चाहता है, दूसरों के लेना चाहता है। हम लोगों ने एक बार एक ऐसे ही जगह पर लोगों से हाथ खड़ा करवाया कि भाई बताइए कितने लोग जो है धर्म के लिए पालन, मतलब धर्म को, धर्म के लिए जान दे सकते हैं। तो हर व्यक्ति ने हाथ खड़ा कर दिया। अभी उनका इंटरव्यू लें, पता चल रहा था कि कौन कितने पानी में, तो पता चलता कि धर्म किसी को पता ही नहीं। एक जीवात्मा के लिए धर्म तो उसकी क्या है, जीवात्मा की पहचान है, उसकी अंतरंग टेंडेंसी है धर्म, मतलब जो नेचर है उसकी धर्म एक जीवात्मा के लिए। लेकिन अपने अहंकार के वश भगवान से विद्रोह करने के कारण जो उसकी मूल चेतना थी, अर्थात आत्मा का जो वास्तविक धर्म था भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अहंकार और काम वासना में इस संसार में। कि मैंने बोला बताओगे क्या बोला, लास्ट टू सेंटेंसेस अभी जो मैंने बोला,
लोगों को जो धर्म क्या है लोगों ने पता नहीं होगा धर्म क्या है, हमारी जो चेतना है ना वो ऑल न्यू।
अभी जो लास्ट टू सेंटेंस बोले ध्यान में था, ध्यान में विषय अपन उसे सुनो,
जीवात्मा का वास्तविक धर्म है भगवान की सेवा करना। हम लोग भगवान के रूपों को नहीं जान, मतलब जहां पर वो अहंकार में उसके
हाँ, जो आत्मा की, आत्मा क्या होती है, ठीक है, धन्यवाद इंग्लिश में बताने की। आत्मा मतलब मैं, हम, जो हम हैं आत्मा, उसका आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो उसका स्वभाव था, जो उसकी नेचर थी, भगवान की सेवा करना या भगवान से प्रेम करना, वो इस भौतिक जगत में भगवान से विमुख होने के कारण किस रूप में बदल गई, ईगो की वजह से ना, और अहंकार और काम वासना के रूप में बदल गई। अब ये जीवात्मा, अहंकार सबसे पहला काम क्या करता है कि उस जीवात्मा को मिलने वाली वर्दी या ड्रेस से उसको आइडेंटिफाई कराता है कि ये जो ड्रेस मिली आपको, ये ड्रेस आप ही हो, ये जो मनुष्य शरीर मिला आपको, यही आपको, आप इसके अंदर नहीं, ये भुला देता है। अहंकार का काम ये होता है, अहंकार में अहम मतलब मैं और मेरा, इस भाव से व्यक्ति ग्रस्त हो जाता बहुत बुरी तरह, और इस अहंकार के वश में आकर सारी योजनाएं, सारे कर्म, सारा राग द्वेष इसी के आधार पर होता है। क्या क्या गलती होगी इससे कि वो अपने आप को शरीर मान लेता है। अब देखिए संसार में जो भी झगड़े हैं, जो भी कलेश हैं, जो भी राग या द्वेष है, या जो भी सो कॉल्ड या तथाकथित सुख की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है, उसका कारण क्या है, अहंकार। कई बार हमें लगता है अहंकार का मतलब भी मैंने किया है, क्योंकि इतना ही नहीं है अहंकार, अहंकार तो मैंने किया तो किया तो सेकेंडरी हो गया, ये मैं हूं यही अहंकार है। और श्रील प्रभुपाद अपने ग्रंथों में हर जगह जीवात्मा की इस सबसे बड़ी कंडीशनिंग का, इस सबसे बड़े अनर्थ का तात्पर्य में वर्णन करते हैं, अहंकार वश। तो क्या बोलते हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में बोला, क्या अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार के वश ये विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ मतलब बहुत ही मूर्ख आत्मा क्या करती है, कर्ता हम इति मन लेते, जो प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर उन फोर्सेस के द्वारा, उन मोड्स के द्वारा जो जीवात्मा से कुछ भी कराया जा रहा है, उसका कर्ता वो क्या मानता है कि मैं स्वयं हूं, उसमें ना तो प्रकृति का और ना ही भगवान का हाथ देता है। एकदम सच्चाई से उल्टा। इसलिए जब तक ये अहंकार और उसके बाद जो उसकी वजह से जो अनर्थ है, जब तक ये व्यक्ति का क्लियर नहीं होगा और उस पर वो मेडिटेट नहीं करेगा समझने के लिए, तो वो जीवन भर चाहे वो भक्ति जैसे एनवायरमेंट में भी हो, समझे, भक्तों के समुदाय में भी हो, वो भक्तों के समुदाय में रहता हुआ भी दुखी रहेगा, राग द्वेष की भावना से ज्वलित रहेगा, हमेशा पीड़ित रहेगा, और हर समय कहीं ना कहीं किसी न किसी में दोष निकालता रहेगा, हीन भावना से ग्रस्त रहेगा और हर चीज में प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब लाभ, अपना लाभ देखने का प्रयास करेगा। सारे के सारे अनर्थ इस मूल अनर्थ से ही आते हैं, क्या अपने को हम लोग शरीर समझते हैं, अहंकार। अहम ममेति मन्यते, पहले तो मैं और फिर ये सब मेरा। और अगर हम लोग अपने अनर्थों के प्रति ध्यान दें, थोड़ा सा सबके अंदर है ना, उन पर मेडिटेट करें कि हाँ मैं कहां कहां गलत होता हूं, मैं किन किन चीजों से डिस्टर्ब होता हूं, तो हम देखेंगे अरे ये तो सारा का सारा, जैसे एग्जाम्पल देते रहते हैं कि अगर हम लोग किसी व्यक्ति को मतलब अजय हरि बोल जी मान लीजिए, और अगर अजय हरि बोल जी को हम लोग आज पुलिस की वर्दी पहना दें, ठीक है, कुछ ड्रामे के लिए, बोलिए आपको ये थोड़ी देर इंस्पेक्टर बनना है, अभी अजय हरिपुर ड्रेस ही न उतारे और रोड पर जाकर लोगों को रोकने लग जाए, पूछने लग जाए, कुछ करने लग जाए, लोगों को बोलने लग जाए कि मैं क्या हूं, ये पुलिस मैं ही हूं, तो जो लोग उनको जानते हैं वो क्या करेंगे, सलाह सही वो कहेंगे क्या हो गया जी लोगों को भी थोड़ी देर के लिए ड्रामे में ड्रेस क्या दे दी, ये तो क्या हो गए इलाके के चोरी बन गए अपने। और जो लोग नहीं जानते वो कहेंगे ठीक है ठहरो पुलिस वाले ही होश है ना, और जो लोग नहीं जानते वो इनकी ईगो को बढ़ा देंगे, तो साहब जी क्या मेरे को प्लीज छोड़ दो साहब, है ना, सौ रुपये है ना। और जो जानते वो इनकी ईगो को गुब्बारे में हवा जैसे निकल देंगे यार, है ना, तो फिर क्या होगा, एक तो इन्होंने अपने आप को मिस आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो मान बैठे कि भाई मैं पुलिस वाले ही हूं, ठीक है ना, और उसके हिसाब से कर्म भी करने लगे। तो अब जो है कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो इनको हवा निकालेंगे, कुछ ऐसे मिले हवा निकालेंगे, है ना, दोनों तरह के लोग मिलेंगे। अब इनकी क्योंकि अब ये क्योंकि पूरी तरह मान चुके हैं कि मैं पुलिस वाला बन चुकी, रियलिटी क्या है, रियलिटी ये की है नहीं, है कि नहीं। और अब पुलिस वाले बनने की वजह से देखो क्या दुख आ रहे हैं, सुख तो यह है कि सब फ्रेंड मार रहे हैं, और दुख क्या है कि लोग सिंचाई कर रहे हैं, और कोई बड़ा अफसर आ गया अच्छा तो पुलिस वाले तुम यहां के बड़े हुए खड़े हो, एक टायर के खड़े हो, यहां खड़े हो, देखते रहो कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, सुबह शाम भाग ड्यूटी कर, ये कर वो कर, तुम कहोगे तो बढ़िया गाने यार नाटक कर लियो, फंस गया तो है कि नहीं, और सुकून कब मिलेगा जब ये उतारू मैं वही ठीक हूं, अजय माला लेके सुबह जाऊंगा उनसे माला करूंगा शाम को आपके सामने एकदम सुखमय जी। क्योंकि आप देखिए नकली लाइफ जीने में कितनी प्रकार की टेंशन शुरू हो गई कि अफसरों ने डांटना शुरू कर दिया, कुछ ने सल्यूट मारना शुरू कर दिया, रिश्वत देने शुरू कर दी, चोर चक्कर से पाला पड़ने लग गया, उन्होंने धमके दे दी, घर से उठा लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, एकदम जीवन बर्बाद सा हो गया, कहते कहां फंस गया। तो व्यक्ति को सुख के लिए शांति के लिए अपनी जो मिथ्या पहचान है, झूठी पहचान को त्यागना पड़ेगा, तब जाके व्यक्ति के अगर हो थैंक गॉड ये स्वप्न ही था, अच्छा है बच गया मैं, और तब व्यक्ति सुकून महसूस करेगा, ठीक है कि नहीं, समझ पा रहे इसको एग्जांपल को। उसी तरह अभी हम लोगों ने जिस वर्दी को पहना है, जिसे मनुष्य देह बोलते हैं, जिसमें मैं पुरुष बनकर आया हूं या मैं स्त्री बनकर आई हूं, और हम एक्टिंग भी वही कर रहे हैं, कौन सी वाली, स्त्री वाली या पुरुष वाली, रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन कर्म कर रहे हैं एक पुरुष की भांति, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मेरे को पसंद है वही बनाओ, बच्चों चुप हो जाओ, मैंने बोला ना घर का मालिक मैं, और अगर थोड़ा पत्नी की चलती है खबरदार, तो वो अलग अपनी वो सेटिस्फाई कर रही। तो इस प्रकार फिर राग द्वेष दोस्त है मेरा दुश्मन है, इससे मेरा प्रॉपर्टी का काम चल रहा है, इससे मेरा बिजनेस का काम चल रहा है, इससे पैसा मार दिया, इससे मेरे ये कर दिया, दुनिया इससे मेरी बात नहीं मानी, दुनिया भर की जो झंझट है वो हमें झंझट लगते हैं, वो मेरे झंझट है, मुझे उसे सुधरना है, उसको सुधारना है, मुझे ठीक होना है। एक ऐसा समय आएगा जो सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। और इस प्रकार हम लोग एक स्वप्न की दुनिया में उन सब झंझटों को ठीक करने का प्रयास करते हैं। और ये कब तक नहीं हो सकते? जब तक नकली पुलिस वाला बनकर, जिस प्रकार मैं परेशान था, और उस वर्दी को उतार कर मैं अपनी सही पहचान पर आ गया, तो मैं शांत हो गया, सुखी हो गया। उसी प्रकार जो अभी मैंने वर्दी पहनी है, मनुष्य देखा जो चोला पहना है, और जिसमें मैं उसी प्रकार कार्य करने का प्रयास करता हूं, और फिर करता हूं, तो फिर मुझे सारे अहम ममेति मन्यते, फिर ये मेरा शरीर है और ये सब कुछ जो इकट्ठा किया वो मेरा अपना है, इसको मैं इंजॉय करूंगा। आसुरी प्रवृत्ति का आसुर रहन, जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब मेरा है, मैंने इतना इकट्ठा कर लिया, अब इतना करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, फिर काम दूंगा, सारी की सारी जो है आसुरी प्रवृत्ति की। सुना आपने, पढ़ा शुरुआत है, याद है थोड़ा सा, आपको भी सब बड़ा खोल के रख दिए जाते ना, ऐसा लगेगा। सोलह अध्याय वो कहते हैं कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है, इस प्रकार मरण काल तक उसको अपार चिंता रहती है। ऐसे व्यक्ति को देह से पूरी तरह आ सकते हैं, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। आखिरी व्यक्ति क्या सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। देखिए प्लानिंग भी कर रहा है। वह मेरा शत्रु है और वह मुझे मार सकता है, उससे मुझे डर लगता है, और वे मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे, मैं मरवा दूंगा। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही सुखी हूं, मैं सबसे ज्यादा धनी हूं, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, है ना। और मेरे आसपास मेरे जो रिलेटिव्स हैं, है ना, कुलीन हैं, ये सब मेरे आसपास हैं, ठीक है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मेरा नाम होगा, मैं आनंद मनाऊंगा। सारा का सारा अज्ञानतावश, सारा का सारी अज्ञानता के लक्षण है। तो वो बैठने को नहीं बता, कहने का मतलब क्या है कि ये एक देहात बुद्धि, वो व्यक्ति जो अपने को देह मानता है, ये शरीर मानता है अहंकारवश, तो इस प्रकार की योजनाएं बनाना भी देखिए। जैसे आपने कहा ना, मैं पुलिस वाला हो गया, है ना, अब मैं यहां जाऊंगा, उस चोर को पकड़ूंगा, फिर उसको पकड़ूंगा, समझ रहे, फिर मुझे पदक मिलेगा, मैं 26 जन के सलूट मारूंगा। सब क्या चल रहा है, सपने के अंदर ही सपना चल रहा है। ये भी क्या कर रहा है, आज मेरे पास इतना है, कल मेरे पास इतना हो जाएगा, फिर मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, वो मेरा शत्रु है, वो मेरा मित्र है। ये सारी चीजें क्यों बोल पा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम अपने शरीर मानते हैं, अपने देह मानते हैं। जिस प्रकार एक पुलिस की वर्दी पहनने के बाद मैं सब कुछ रियल मान रहा था, उसी प्रकार ये जो बातें हैं, जो कि हर व्यक्ति की सोच है ऐसी, क्षमा करो, तो ये देहात बुद्धि का लक्षण है, अहंकार का लक्षण है। और असत्य रह सत्य करी मानी, जो झूठ है उसको सत्य मान लिया है, इसलिए हम लोगों को हर क्षण इंद्रियों के बोध से कहीं टच होती है तो आनंद मिलता है, कहीं कांटे पे लगता है तो दुख होता है। सुगंध और दुर्गंध नाक से महसूस करते हैं, कान से अच्छे शब्द और बुरे शब्द, अपनी प्रशंसा और गलत शब्द कानों में चुभते हैं। कैसा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो कर्कश वाणी घुसा दे हमारे प्रति तो अजीब सी शक्ल हो जाती है हमारी और इसमें कोई अच्छे शब्द बोल दे तो कमाल कर दिया, क्या लेक्चर दिया आपने, तो अलग से व्यक्ति के अंदर गदगद दिखा जाए, देख रहे समझते हैं बात। इसी जीवा में कुछ अच्छा रख रहे हैं, स्वादिष्ट मन पसंद, तो अलग सी अलग से चेहरा होता है, अलग से संतुष्टि होती है। इसी जीवा पर कुछ ऐसा है मुझे पसंद नहीं है, कुछ भी, तो वो हमें दुख देता है। इंद्रियों का बोध हो रहा है जब सेंस ऑब्जेक्ट सेंसेस से मिल रही है, तो हम लोगों को उसके बोध से सुख और दुख महसूस हो रहा है। वैसे तो सेंसेस डेड है, इसके अंदर कुछ थोड़ी बोलचाल की भाषा नहीं, लेकिन ये जो लगी हुई इंस्ट्रूमेंट से यहां, तो वो जो मन है वो फील कराता है कि हाँ अच्छा है। तो इस प्रकार जितना अधिक कोई व्यक्ति देहात और बुद्धि में रहेगा, ग्रॉस मटेरियलिस्टिक टाइप, मटेरियली एनग्रॉस, जिसकी जितनी ज्यादा चेतना स्थूल तत्व में घुसी होगी, वो व्यक्ति उतना दुखी और उतना डिस्टर्ब रहेगा। और जिसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन की, आत्म साक्षात्कार की, अपनी सही पहचान की बढ़ाने की क्षमता होगी, उसको वो सारे दुख, वो सारे सुख क्या होंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसलिए एक ही प्रकार का दुख जब अलग अलग दो लोगों को आता है तो दोनों को अलग अलग ढंग की पीड़ा होती है। वही संसेक्ट है, कई लोगों को घाटा हुआ, कई लोगों ने सह लिया, कोई दुखी हुए, कोई हॉस्पिटलाइज हुए, कई लोग सुसाइड कर लिए। कारण दुख आया था, अलग अलग डिग्री का था, हो सकता है किसी का ज्यादा लॉस हो उसके बावजूद भी उसने सह लिया हो, और किसी व्यक्ति के पास कम भी रहा हो लेकिन उससे भी दुख होकर उसने आत्महत्या कर लिया। कारण केवल हमारी देहात चेतना। हम लोग वास्तव में देहात बुद्धि को छोड़ना ही नहीं चाहते, यह हमारा सबसे बड़ा अनर्थ है, सबसे बड़ा दुर्गुण है। क्या कि हम लोग जो हमारी चेतना पूरी तरह देहात बुद्धि में मंझी हुई है, इसको हम त्यागना भी नहीं चाहते। शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज की, क्योंकि जो त्यागना चाहेगा उसके दुख कम हो जाएंगे। जैसे कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं नए लोगों को, कि अगर कोई व्यक्ति खराब सड़क से, जो टूटी फूटी सड़क है, और उसमें रिक्शे पे या ऑटो पे जा रहा है, तो छोटे से छोटा खड्डा भी उसके मुंह से आवाज निकालेगा, लेकिन गए उछलेगा, इतना बहुत प्रॉब्लम देगा उसको। और कोई अच्छे अमाउंट की गाड़ी, 20 लाख 30 लाख की गाड़ी, उसमें जाएगा तो खड्डे तो महसूस होंगे लेकिन वो धक्के महसूस नहीं होंगे, वो झटके उतने महसूस नहीं होंगे। तो इसमें समझ सकते हैं कि जो लोग पूर्णतः देहात्म चेतना में हैं, जिनको लगता है कि मैं यूजी, ये मेरी कास्ट है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, हम ठाकुर हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो अलग प्रकार की कंडीशन से कंडीशन है। जितना ज्यादा इनग्रॉल थोड़ा ऑटो पे ट्रेवल कर रहा है, वो उसको हर छोटी बात लगेगी, खुशी की हो चाहे दुख की हो, तो उसको डिस्टर्ब करेगी। वो खुश, ऐसा व्यक्ति खुश कभी रह ही नहीं सकता, और खुश रहेगा भी तो कितना, जिस प्रकार पशु हैं सब देहात्म चेतना में रहते हैं, उनको बस देह के लिए कुछ भी मिल जाए खुश, हड्डी डालो खुश, छीन डालो दुखी, उसकी गली में पहुंचा दुखी, और ऐसा होता ना, तो बहुत ज्यादा वो देहात्म बुद्धि में है और इसलिए उनको ये योनि भोगनी पड़ रही है भोग के कारण। तो उसी तरह जब मानवीय चेतना उस स्तर पर होती है, पशुवत अन्नमय चेतना देहात बुद्धि, तब तक व्यक्ति को हर छोटी बात या हर बड़ी बात दुख और उतने ही कष्ट देती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है अपनी इस देहात्म चेतना से बाहर निकलने का, ये रियलाइज करने का कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा का जो धर्म जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या है? भगवान की सेवा है। अब समस्या यह है कि जो भक्त इस प्रकार प्रयास भी करता है सेवा करने का, तो अगर वो व्यक्ति ठीक प्रकार से साधना नहीं रखता, नियमित रूप से अध्ययन नहीं करता, भक्तों का संग नहीं करता, संग का मतलब कि वरिष्ठ भक्तों के पास बैठकर पूछना, अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखानी, उनसे पूछना कि मैं और आगे कैसे बढ़ूं, मेरे ये अनर्थ है इनको कैसे समाप्त करूं, तो अगर नहीं करते तो फिर भक्ति में आने के बाद भी या जब इत्यादि करते हुए भी, सेवा करते हुए भी कब देहात्म चेतना में चला जाए इसको पता नहीं। आत्मा का धर्म है सेवा करना। ऋषि के न ऋषिकेश भक्ति उत्तम बोला गया कि अर्थात अगर इस देह को भी हम लोग भगवान की सेवा में लगाते हैं तो यही तो कर्म करती है, यानी कि कर्मों के द्वारा ही तो हमको जन्म लेना पड़ता है, पुण्य हो या पाप हो। लेकिन जब भक्त को मालूम पड़ जाता है कि यही इंद्रियां जब मैं भगवान की सेवा में लगा दूंगा तो ये न पुण्य कर्म है और न ही पाप कर्म। क्या है ये? ये भक्ति योग है। और भक्ति योग का कोई रिएक्शन नहीं है, उसके व्यक्तित्व का दोबारा जन्म नहीं। लेकिन जब व्यक्ति जैसे कभी अपने टायर चलाया बचपन में, भागते भागते टायर कितने लोगों ने चलाया, वो टायर चलाते थे लोग साइकिल का टायर, उसको पीछे से भी मारना पड़ता था और जब लेफ्ट जाए तो क्या करना पड़ता था, इस इधर करना पड़ता था, जब राइट जाना जाए तो इधर इधर करना। अगर जिसने टायर नहीं चलाया तो अभी भी चार टायर तो चलाते हैं सारे, बिना स्टेयरिंग पकड़े जब गाड़ी को रेस देते हैं क्या होता है, कभी इधर जाती कभी इधर जाती है। तो क्या करना पड़ता है सही डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, हमें उसको हमेशा ट्रैक पर रखना पड़ता है गाड़ी। उसी तरह जब हम भक्ति के पाथ पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, तो भक्ति के मार्ग पर भी हमें उतनी ही डेंटिंग पेंटिंग चाहिए जिस तरह उस टायर को लेफ्ट राइट मार के ठीक करते थे, या गाड़ी को हम लोग स्टीयरिंग को संभाल कर हर समय लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमारे साथ तो क्या है कि हम लोग जिस ट्रैक पर हैं उस पर रहकर दुर्घटनाएं ज्यादा घटती हैं, क्योंकि हमारी तो सावधानी रहती नहीं। हम तो हमेशा ही भूले रहते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का। जिस व्यक्ति को मालूम है कि मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, वो कभी रोएगा दुखी नहीं, परेशानी होगा, उसका किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा सबसे बड़ी बात। वो हरे को प्रणाम करेगा, बाबा मेरे से कोई गलती हो तो बताना, कहां क्यों, क्योंकि मुझे वहां जाना है, कहां भगवत धाम। बड़ा सीरियस होगा वो। इसलिए कई बार भक्तों के बीच में रहते हुए हम इतना सोशलाइजिंग शुरू कर देते हैं, इधर की बात उधर की बात, मैच की बात उसकी बात, फिर थोड़ी भक्ति की बात, फिर देखते हैं कि अरे आजकल कौन है नया, कौन आगे बढ़ रहा है, अरे ये कल का तो आया हुआ है क्या, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती है, फिर भूल जाते हैं। एक तो अपना लक्ष्य भूले हुए हैं, प्लस दो चार जो हो खड़े उनका भुलवा दिया, और जो बेचारा नया आया वो कहेगा यद यद आ जनते श्रेष्ठ तत्व, जैसे जैसा आप लोग करेंगे, आप ही तो श्रेष्ठ लोग हैं आगे, तो मैं आपसे चार गुना आगे रहूंगा। तो देहात्म चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करना। तो जब भक्त लोग प्रयास करते हैं सही चेतना में हर समय सावधानी के साथ, तो हमेशा अमृत ओस रहते हैं कि मुझसे गलती ना हो जाए, मेरे से कोई अपराध ना हो जाए। अगर हो गया फिर ट्रैक से गाड़ी उतर गई तो क्या करोगे? ठीक है चलने दो, तो हो गई उतर गई तो क्या दिक्कत? नहीं 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 नहीं, जिसको पहुंचना है टाइम पर, जिसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो क्या करता है वो तुरंत गाड़ी पे ट्रैक पे लेकर आता है इमीडिएटली। आप घर जा रहे हो, अचानक दिमाग में बात चल रही है ना, जाना आपको सेक्टर, जाना मधुबन चौक, और गाड़ी टर्न कर दी कहीं, तो क्या करोगे? अरे यार कहां गया, तुरंत मोड़कर वापस लाओ, क्यों? पेट्रोल भी बचाना है, टाइम से भी पहुंचना है और अपनी डेस्टिनेशन जान भी जाना है। उसी तरह जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है सही चेतना में सही भक्तों के साथ सीरियसली, तो उसको मालूम होता है मुझे जाना कहां है, कितने समय पर पहुंचना है। तो जैसे ही वो अपने ट्रैक से थोड़ा लेफ्ट और राइट होता है उसको तुरंत पता चल जाता है, उसको पता चल जाता है मैंने अपराध कर दिया, मैंने फालतू में लेफ्ट टर्न ले लिया, अभी ये लेफ्ट टर्न पता नहीं कहां लेके जाएगा मेरे को, ये छोटा सा अपराध जो किया पता नहीं कहां लेके जाएगा, तो तुरंत माफी मांगता है, वापस ट्रैक पर आ जाता है, फिर चला फिर अपराध होता है फिर मांगता है, जहां जहां से स्टेयरिंग मोड़ा लेफ्ट राइट वो तुरंत भक्तों के समूह में आकर फिर से माफी मांगता फिर से ट्रैक पर आगे बढ़ाता है, क्योंकि उसको मालूम है। देखिए ये उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सीरियस है भक्ति के लिए, समझ पाए, जो सच में भगवान के धाम जाना चाहता है, जो यहां पर भक्ति के लिए ही आया उसकी बात हो रही है। और जिनका लेफ्ट हो गया ठीक है जी, मैं ले लिया लेफ्ट, पैसे की कमी थोड़ी मेरे को भरवा लूंगा और मोर के लिए, फिर एक अपराध और करूं और गए, तो जो जीवन का लक्ष्य वहां ना पहुंचकर पता चले वो समय पर बाद भी पहुंच गए, ठीक है कि नहीं। और किसको दिखाएगा वो ईगो, खुद तो ईगो है, और दो चार छह लोगों को जिन्होंने भक्ति नहीं करनी थी, जो आपको मॉल कर दिया भूल गया आपको ना हो मान गया, आप जैसा अपराधी नहीं देखा है ना, उद्देश्य उनका भी नहीं है जिसके संग में, और उद्देश्य उसका भी नहीं था, झुके नहीं है भूलिए वहां पर भक्ति में आ गए झुके नहीं कभी हमेशा, सर कटा सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा है ना, भक्ति वालों के लिए तो बहुत मुश्किल है भैया, इसमें उल्टा होना चाहिए, सर घटने से पहले 50,000 झुका लेंगे नो प्रॉब्लम, सर रहेगा तो भक्ति कर लेंगे माला कर लेंगे धाम जाने तक का रास्ता मालूम पड़ा रहेगा, क्योंकि दिक्कत होगी तो माफी मांग लेंगे, बात समझ। तो इसलिए जो भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं तो उन लोगों को पता चलता है अरे वाह मैंने क्या एडवांसमेंट किया, कि पहले जब मैं ऑटो में जाता था या रिक्शे पर जाता था तो एक एक छोटा छोटा खड्डा जो है ना बड़ा लगता था, ठां ठां उछलता था, अभी आजकल जो है ना उस तरह के जो खड्डे आते कम लगते हैं, फील होगा उसको, जो सही चेतना में सही व्यक्ति एडवांस कर रहा है तो वो देखता है कि हाँ पहले जब पिछली बार मेरे को ये प्रॉब्लम आई थी तो मैंने ये कर दिया था, अभी सेम प्रॉब्लम आई तो मैंने सह लिया, वो देखता है अपने एडवांस में देखता है, लेकिन उधर ही खत्म नहीं होना, क्योंकि माया का एक काम और भी है, माया इतने कर देती है अगर हम सही चेतना में प्रयास कर रहे हैं तो माया इतने सारे तीर छोड़ेगी, ऐसी सिचुएशन बनाएगी कि आपको याद करा दे कि भैया आप अभी उधर ही हो, ऑटो वाले ही हो भी आप, तुरंत क्योंकि थोड़ा सा अहंकार भी होता है, बस लगता है यहां अब तो सब कंट्रोल में है, नो प्रॉब्लम है, अब तो 30 नहीं तो 60 लोग मेरे को जानते हैं जो बोल रहे हैं अच्छे भक्त, तो माया तुरंत चल लेती है। एक बार श्री प्रभुपाद जी के को किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा, उस पत्र में था कि प्रभुपाद ने आपके दो शिष्यों को देखा बहुत नकारात्मक दृष्टि से उन्होंने बात करी लोगों से ठीक नहीं करे, प्रभुपाद ने कहा कि पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, बड़े प्यार से बात महसूस करी, लेटर लिखा कि लंबे समय के बाद लिख पा रहा हूं, था नहीं लिख रहा हूं, और आपने जो मेरा ध्यान मेरे दो शिष्यों के प्रति लगाया तो मैं ये बताना चाह रहा था कि देखिए अगर उन्होंने गलती कर दी है तो अब ये देखिए कि वो बेचारे अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं भगवान की सेवा में, पता नहीं कितने कितने प्रकार की चीजों में छोड़कर आज सेवा में लगे, और हर कोई भगवान की सेवा नहीं कर पाता, नहीं कर पाता, बड़ा मुश्किल है त्याग करना किसी भी चीज का, तो अगर उन्होंने कुछ दो तीन छोटी छोटी कर दी चीजें तो वो अब समाप्त करते हैं उसको नजरअंदाज कर देना है कि नहीं। हमारे सदेश होगा हम लोगों को अगर किसी का कुछ अवगुण दिख जाए तो गुणों की जो उसकी लिस्ट है वो तो वो दिखाई नहीं देती है। जब भक्त हर व्यक्ति के अंदर गुण देखने लगता है पॉजिटिव, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा ऐसा दो तरह का होता है, एक तो क्या एक तो आर्टिफिशियल शुरू करता है यार, चलो तो पबजी ने बोला था बोल देता हूँ, ओ ये मुझे काफी अच्छा है, अच्छा ये भी अच्छा करते हैं, कुछ दिन चलेगा फिर नीचे आया फिर बाबा ट्रैक में आया। लेकिन जब भक्ति बड़ी सावधानी पूर्वक सीरियस से की जाती है, जीवन का लक्ष्य जीवन दिमाग में रखकर, तो फिर व्यक्ति के अंदर ही क्वालिटी अपने आप आ जाती है। वो तो देखता है कि हर व्यक्ति ही इतना उपयोगी है भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, इस मंदिर के लिए, और किसी के अंदर अगर अवगुण दिख भी जाए तो कहता ठीक है, अगर अवगुण है भी जो मुझे दिख रहा है या प्रकृति के गुणों में कुछ कर्मों के हिसाब से कर रहा है, ठीक है क्या दिक्कत है, मुझे ऐसा नहीं करना, कल को मैं ऐसा ना करूं, वो फिर सुधार कर सकते और उसके अंदर अच्छा गुण देखकर उसको सेवा करना। इसलिए भक्तों को चाहिए कि अगर कहीं किसी भक्त के अंदर या जो अभी भक्त नहीं भी है ना, उनके अंदर कुछ ऐसा दिख जाए तो किसी को प्रतिशत करने का फायदा नहीं, क्योंकि किसी के बारे में किसी के दोषों को और अवगुणों को चर्चा करने से उस व्यक्ति के दो फायदे होते हैं। एक मतलब दोनों के फायदा होता है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं जिसकी निंदा कर रहे हैं उसके सारे के सारे जो पाप हैं या जो अपराध हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, कितना बढ़िया है ठीक है ना, जिसके बारे में कर रहे हैं। और दूसरा नुकसान क्या होता है कि अपराध करने का तो वैसे आज तक कभी फायदा पड़ा ही नहीं, लेकिन पड़ा कि कोई फायदा भी होगा अपराध क्यों नुकसान, और केवल तो इस प्रकार हम लोगों को अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। कई बार होता है कि टीवी की आदत होती है, किसी को भी देखकर सिंचाई करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा हाथ कर लिया, थोड़ा व्यायाम कर लिया पांच मिनट, तो ये सब प्रजलता में आते हैं। हो सकता है कि हमारी क्वालिटी ना हो, हमारे अंदर गुण ना हो इस तरह की चर्चा करने के, उसके सदगुण देखने के, लेकिन कुछ बोले भी ना गलत, अपराध तो ना करें। तो अगर हम लोग इन चीजों का सावधानी से पालन करेंगे, ध्यान को इन चीजों पर वो रखेंगे, तो हम जिस स्तर पर जाना चाहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी भूलने के कारण हम लोग नुकसान झेल रहे संसार में, उसको फिर से रिवाइव कर पाएंगे। इसलिए हर भक्त का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि वो इस देहात्म चेतना से ऊपर उठे। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह कर रहा होगा तो फिर वो किसी के अंदर तो उसको मालूम है कि फायदा नहीं है, किसी के अंदर अवगुण देखना है, उसके बारे में चर्चा करना, उसकी शिकायतें लगाना, वो क्या करेगा, इग्नोर करेगा। एक नंबर दो, वो अपने भक्ति से अपने साधना से काम रखेगा, और अगर उसको लगता है कि इस प्रकार की गलती से किसी का नुकसान हो सकता है, उसी भक्त का नुकसान है, तो वो क्या करेगा, अथॉरिटी रिलेटेड अथॉरिटी के पास जाकर रिपोर्ट करेगा कि भाई जी इस भक्त के अंदर बहुत सारे गुण है, ये क्वालिटी है, बट इसके अंदर ना मैंने इस दिन ऐसे दिन ये देख लिया गलती से, तो आप प्लीज देख लेना कैसे करना है। अगर हम किसी का भला चाहते हैं तो उसके द्वारा हुई कोई गलती को उसकी रिलेटेड अथॉरिटी को बता दे, रिपोर्ट कर दे, और फिर ये एक्सपेक्ट ना करें अब देखते कल क्या होगा, अरे कुछ नहीं हो, चलो परसों होगा, अभी भी नहीं हो, तो उससे क्या होगा कि हम उसके फल से आ सकते हैं, तो फिर वो रिपोर्टिंग ना कहलाकर अपराध कराएगा, भैया तुमने अपराध कर दिया, तुम तो गलत चेतना से गए इसका। तो जब तक इन सब चीजों को, छोटी 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 चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति के लिए, देखने में छोटी लग सकती है, सावधानी से और सीरियसली इसको अपने जीवन में उतारता है, इनसे बचता है इन सब चीजों से, तो उसकी उन्नति बहुत शीघ्र होती है। भक्ति में उन्नति करने के लिए 10,000 साल है हमारे पास, अभी 9,500 साल ठीक है ना, लेकिन हम सब जानते हैं कि इतनी फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी इस मन को कंट्रोल करना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों की ओर जाने से रोकना, 16 महला का जप करना सावधानी पूर्वक, 1 घंटा रीडिंग मेंटेन करना, 4 नियमों का सख्ती से पालन करना, फेवरेबल कंडीशन होते हुए भी कितना मुश्किल हो रखा है। और दिन ब दिन श्रीमद् भागवत में बताया ये सब दया पवित्रता ये सब चीजें खत्म होती जाएंगी। ऐसी परिस्थितियों में जब और वर्स्ट सिचुएशन होंगी तब कैसे करेंगे सब? अभी जो मुश्किल है चीजें हमारे लिए, तो दिन ब दिन ये सब बढ़ेगा। इसलिए बेहतर है कि व्यक्ति तुरंत अपने आप को ऐसी परिस्थिति में लाए, ऐसी स्थिति पर लाए जहां से कि उसको वो चीजें डिस्टर्ब न करें। तो तुरंत व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्टिव होना चाहिए, आत्मविश्लेषण करते रहना चाहिए, मेरे क्या प्रोग्रेस चल रही है। स्कूल में तो हम लोगों को साल में पता चल जाता है, क्यों साल में क्या, हर 3 महीने में या शुद्ध महीने में या शुद्ध हर वीकली कुछ न कुछ एग्जाम लगे रहते हैं, तो पता चलता है प्रोग्रेस रिपोर्ट से ठीक चल रहा है, इधर चल रहा है। पीटीएम भी होती है, पेरेंट्स को बुला लेते हैं, कितना मतलब ध्यान रखा जाता है। ग्रेजुएशन लेवल तक बच्चे को कितनी मीटिंग्स में पेरेंट्स को आना पड़ता है, कितने रिपोर्ट कार्ड उसको मिलते हैं, उसी के बेसिस उसके एडवांसमेंट होती है। इसी तरह भक्ति में भी होना चाहिए। अगर यहां पर समय तो खुद जाना चाहिए, वो जी मेरी रिपोर्ट क्या है कुछ बताए, खुद के साधन का चार्ट मेंटेन करना कि मैं कितने बजे उठता हूं, मंगला आरती करता हूं, गुरु पूजा करता हूं, जब कितने बजे तक खत्म कर दूंगा, सुबह भागवत में नहीं जाता तो सुनता हूं क्या या पढ़ता हूं क्या, 1 घंटा दिन में कितने चैंटिंग एक्स्ट्रा कर ली, कितने घंटे एक्स्ट्रा हो गया, कौन से पुस्तक पढ़ रहा हूं, ये मेंटेन करना चाहिए हर। और फिर दिखाना चाहिए ये भी मेरी रिपोर्ट कार्ड वीकली, ये भी मेरे मंत्र है, सो दैट ये हमारे ऊपर हमेशा एक चेक रहे जो किसी को पसंद नहीं है इस रूप में खासकर। और यही कारण है कि हम यहां है, कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर किसी को नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर सोच रहा है, पसंद नहीं किसी। लेकिन अगर हमने गुरु का शासन स्वीकार नहीं किया अपने ऊपर, तो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र रूप से किए जाने वाले भक्ति का बहुत अधिक फायदा नहीं होता। उसमें लगता तो है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, सब तो तारीफ करते हैं, नहीं चलेगा नहीं। जैसे प्रसाद भगवत प्रसाद, गुरु को प्रसन्न करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और तभी गति है। तो इसलिए देहात्म चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करना, नियमित रूप से पुस्तकों को पढ़ना प्रभुपाद जी की, जो कि हमेशा हमारे को हमारे जो प्रभुत्व जमाने वाली मेंटेलिटी है देहात्म बुद्धि के अंदर रहकर अहंकार वश, उससे निजात मिलेगी। कितनी कितनी छोटी बातों पर भी हम परेशान हो सकते हैं, मानो किसी ने अगर आपकी तरफ यूं घूरकर देख लिया, उसने जाने आगे देख लिया, पता नहीं आंख में कोई मिट्टी का कण घुस गया तो कुछ था या वैसे नहीं, हमारी जो है ना भैंस पानी में चले जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। किसी ने 4 लोगों को घर पर बुलाया, शादी में बुलाया, पार्टी में बुलाया, आपको नहीं बुलाया, आप गए, मुझे नहीं बुलाया, तो कि दुखी होने के लिए कोई हमको बहुत कुछ थोड़ी कर रहा है ऐसे होते हो बताओ, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से फेर कर दो वैसे। तो कहने का मतलब है कि बहुत जीवन भर उथल पुथल लगी रहेगी। इसलिए देहात्म बुद्धि को तुरंत तो नहीं त्यागा जा सकता, प्रयास किया जा सकता है। और जब कभी हृदय में दुख लगे या ज्यादा सुख लगे तो तुरंत सोचना चाहिए कि मैं देहात्म बुद्धि के प्लेटफॉर्म पर खटता, मेरा अहंकार बढ़ रहा है, पुलिस वाली नौकरी जो है उसको सैल्यूट लग रहे हैं, खुशी हो रही है, समझ सकते जबरदस्ती पुलिस पर ही लोगों को सैल्यूट मार रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है उसका उल्टा। तो जब कभी भी दुख हो और सुख हो या दूसरी सिचुएशन आए, राग द्वेष हो किसी से भी, तो हमें तुरंत सोचना चाहिए कि मेरा देहात्म बुद्धि जो चेतना है, मेरा अहंकार बढ़ रहा है, बड़ा हुआ है, उसकी वजह से ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। सिंपल है, कोई ना कोई दोस्त दुश्मन है कि नहीं हमारा, कुछ अच्छे लगते हैं कुछ बुरे लगते हैं, अब तो हमारी कंडीशनिंग के कारण है। कई सिचुएशन आती है दुख देती है, जिन देती तो जी इसमें तो गुस्ताना बाजी कर दी। देखो दूध मंगा रहे 3 किलो दे रहा है 1.5 किलो रहा है, इसमें गुस्सा होना बोला था मैंने, गुस्सा तो होना जरूरी। हाँ तो ये हमारी देहात्म बुद्धि का एक्सटेंशन है दूध से परेशान होना। वैसे बता रहा हूं आपको, देखिए मैं थोड़ा सर्कल में बता रहा हूं लेकिन इसका फायदा बड़ा है अगर आप थोड़ा समझे। और जिस व्यक्ति को ये सब चीजें नहीं आती है, समझ नहीं पाता, तो बेचारा वो सुखी कैसे रह सकता है। प्रभु जी आप तो कई सालों कई लोग मिलते हैं, प्रभु जी आपके वो जो भक्त हैं क्या भक्त, कितने टाइम से माला जप रहे, अभी भी उनके अंदर इतना गुस्सा, अभी भी उनके अंदर ये, अभी भी वो, अभी रिपोर्ट कार्ड लोग देते हैं हमें क्या गुरु जी, उसको तो इतनी तालियां बजती हैं, उसके लिए ऐसा होता है तुम्हारे यहां स्टेज पर होता है वो ये होता है, वो लोग ऐसा उसने ये कर दी। तो कहने का मतलब क्या है कि भक्त को हर समय हर जगह भक्ति रहना चाहिए, इधर भक्त इधर कुछ, मतलब कहते हैं गंगा गए तो गंगा रंग, यमुना गए तो यमुना। आई एम वेरी फ्लेक्सीबल डिवोटी, जब मैं अपने दोस्तों के पब में जाता हूं थोड़ी पी भी लेता हूं, और जब मैं सिटी में जाता हूं तो वो भी ले लेता हूं, और जब मैं मंदिर आता हूं थैली भी टांग लेता हूं, है ना। ऐसा नहीं है मतलब आप कहोगे बोल हम तो नहीं करते ऐसा, लेकिन हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब मैं मान लीजिए भक्तों के हिसाब से बताएं कि जब हम घर में होते हैं तो ठीक है क्या बोले करते हैं, है ना, कभी रूल हो जाते बच्चों पर या वाइफ पर, वो जब या वाइफ हो जाती है बहुत कर ली बच्ची इधर बैठो आराम से, या वो पूरा का पूरा कल्चर चेंज हो जाता है एक ही बार घर का, मानते नहीं घर वालों को वैष्णव, तुम जितने मर्जी माना कर लो हो तो नहीं मुझे मालूम नहीं आपके बारे। तो इस प्रकार इन सब चीजों से ऊपर, और जो दुख और सुख बता रहे हैं या हर प्रकार के जो ट्रिबुलेशन हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं या जो भी बोलते हैं जो झंझट अब जितने गए वो लगने नहीं चाहिए अपने को, अपने को लगना नहीं चाहिए उससे कुछ भी। तो ऐसी स्थिति जो है हम रियलाइज करते हुए जानेंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा अंधकार अब कम हो रहा है पता चलेगा, सेल्फ रियलाइजेशन इसी का। तो जब हम लोगों का अहंकार समाप्त होगा, जितनी मात्रा में अहंकार खत्म हो रहा होगा उतनी मात्रा में हम ये रियलाइज कर रहे होंगे कि हम लोग आत्मा है और आत्मा की आत्मा का धर्म भगवान की सेवा करना है, तो फिर वो धर्म का पालन करना शुरू करना है। और जब उसके धर्म का पालन करता है तो फिर वो यहां नहीं रह सकता, अगर भगवान की योजना है तो रहेगा, नहीं तो इधर से उसका वीजा लग जाएगा गोलोक वृंदावन के लिए, यहां लगे जरूरत ही नहीं, किस लिए रुकेगा हम, अच्छे आदमी जुड़ते हैं संसार में, अच्छे तो सारे ऊपर है। जिसने ये रियलाइज कर ली कि मैं शरीर में आत्मा हूं, मेरा स्वभाव सेवा करना है और सेवा भगवान के धाम में होती है, अगर तो भगवान की योजना है कि तुम रुको और प्रचार करो तब वो यहां है, अदरवाइज उसको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सब लोग इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और प्रयास करें आगे बढ़ने का, ठीक है। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है तो कुछ
एक घंटे हम उनके साथ रहते हैं जो सब कुछ करते हैं, वहां जाने का सब भरपूर हो जाता है और ये बड़ी बहुत बड़ी प्रवृत्ति हो जाती है। अब क्या है
बात, देखो ठीक है और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि जब तक तो मंदिर में है और भक्तों के संग में क्वेश्चन मतलब कथा सुन रहे हैं तो लगता है कि यहां सुधरना है, लेकिन जैसे बाहर निकलते हैं फिर से उस वातावरण में आते हैं तो लगता है नहीं कि हो सकता कुछ कुछ ठीक है यार ये माने कर लो बस ठीक है ना जी। नहीं लाल पहनने से थोड़ी कुछ होता है, मार्केट में कितने प्रकार के कलर आते हैं, हृदय का रंग बदलना है। उसके लिए हमको जैसे घोड़ा होता है घोड़े के कान पर आंख पर वो लगाते हैं ताकि सीधा चलेगी, इधर देखते इधर घुस जाते इधर होते गंगाराम यमुनाराम रहते हो तो बद जीव को इसलिए साधना भक्ति का सख्ती से पालन करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, अर्चित ग्रहों की सेवा करना, गुरु अष्टकम गाना तेज आवाज में, जप करना बैठकर, भगवान के लिए भोग तैयार करना, अपने को कुछ झोंक देता है भगवान की सेवा में शरीर से, बेशक मन भाग रहा है उधर लेकिन वो अपने को झोंक देता है पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा करना है। मार्केट जाएगा तो भोग लेकर आए क्या कहते हैं उसे, धोती कुर्ता में रहेगा, तिलक में रहेगा, कंठी तिलक में रहेगा ताकि गलती से कुछ गलत ना कर पाऊं, ताकि हर व्यक्ति ये बोले अरे प्रभु जी पंडित जी आपको हमें मालूम है ये बात करो उसको मार कुछ दूसरे मोड़ से भी गया तो नहीं करेगा कि पूछ लो स्कोर क्या हुआ जरा, नहीं पूछेगा होगा अरे पंडित बोल दिया पहले तो मुश्किल हो गया। तो अपने को दिए गए नियमों से बांधना जा रहा है, बंधन ही हमारी स्वतंत्रता का कारण बनेगा। लग सकता है कि बंधन है, अरे यार ये बंधन ये भी कर लिया आप ये भी करना, नहीं ये बंधन हमें जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्कर से स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। रेड लाइट हमें ठीक ढंग से हमें अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए, अगर रेड लाइट ना हो तो नहीं पहुंच सकते, बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए हैं जिसको हम धर्म से शुरू किया था कि धर्म के नियमों का पालन करना, तो उसमें गुरु के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन है कि हमें चार नियमों का सख्ती से पालन करना, किसी व्यवस्था में 16 मल्ला का कम से कम जप करना और अधिक से जितना मर्जी एक घंटा भगवद गीता भागवतम चेतना तक पढ़ने का प्रयास करना, जो भी ग्रंथ के हम हैं तो भाई सारी छोटी पुस्तकें पढ़ना, दो पुस्तक बढ़िया ढंग से हाईलाइट करके इंडरलाइन कर किसी न किसी भक्ति विषय को ज्वाइन करना, हफ्ते में कम से कम ज्यादा से ज्यादा नहीं कम से कम एक दिन मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिर में अटेंड करना, सातों दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है लेकिन कम से कम पूरे अपने भक्ति शरीर के साथ ग्रुप के साथ मंगला आरती अटेंड करना, गाना बैठ के जप करना, गुरु पूजा करना और अगर हो सके तो 10 मिनट भागवतम से एक श्लोक और उसका प्रकट पढ़ के जाना, मुझ स्तर में बोलते हैं। कुछ लोगों ने शुरू किया भी है शायद और जिन्होंने नहीं किया उन्होंने लीडर से बात करके शुरू करें, सबको मैसेज गया है करने के लिए तो बांधना पड़ेगा अपने, ठीक है ना, तो फर्क पड़ेगा। अब इतना तो मानते नहीं कि पहले के जीवन से फर्क है तो इसके बाद भी आगे बढ़ जाएंगे लेकिन प्रयास रहे हैं। और
जो आप सेवा कर रहे हो जो आप मंदिर में मंदिर निर्माण है ऐसे भी है
किसी प्रसंग को आपने जो पढ़ा है उसमें ज्यादातर तो यही है, हर एक गुरु की सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये है कि चार दिनों का पालन 16 माला का जप, और ये सब चीजें जैसे जप है ये हमें सबसे पहले अपने मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, उसके बाद हम सेवा करें। मॉर्निंग प्रोग्राम मंदिरों में इतना कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति 10 लाख का चेक लेकर भी खड़ा है भागवतम के टाइम पर आ गए उसको बोलो भागवतम के बाद बोलो आता नहीं है तो बच गए। तो जब तक मॉर्निंग साधना ही नहीं होगी, हमारा ट्रेनिंग ही प्रॉपर नहीं होगा, हमको युद्ध स्थल में भेज देंगे पकड़ो ये बंदूक, तो बहुत बुरी हालत होगी हमारी। इसलिए पहले अपने जन्म सार्थक ही कर करो का अपने को पहले सार्थक करें, प्रॉपर स्ट्रांग बनाएं, उसके बाद हम लोग वो भी करें। ठीक है, हाँ जी। इसमें क्या होता है कई बार ध्यान देना पड़ेगा कि कई बार सेवा करते करते जैसे ना हमने बताया कि अगर माला जो है 16 या जो भी हमारे तो वो हमारे को आत्म साक्षात्कार करने में बड़ा मदद करता है, और अगर हमारी मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया जप में हमारे को दिक्कत आ रही है ज्यादा और हम सेवा को तरफ ज्यादा ध्यान दें, ऐसे बहुत ही एक आधा कोई एक्सेप्शन केस था जिसको प्रभुपाद ने मना किया था, वृंदावन में सब लोग बोलते प्रभुपाद जी माला नहीं करते सेवा लगाते हैं, प्रभुपाद ने उसे शेड्यूल देखा तो सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा में लगा रहते हैं और 3 घंटे 1-4 घंटे छोड़ने को मिलते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा इसको छूट है, लेकिन आप सो रहे हो 8 घंटे 7 घंटे बाहर दुनिया के काम इतने कर रहे हो फिर बाकी सेवा को आप कह रहे थे इसलिए मैं मना कर वो नहीं चलेगा, साधना पक्की और सेवा भी कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन है 2 दिन है जब आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है तो उसके तुरंत बाद लेकिन जब जरूर करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कभी किसी ने बोला इधर आओ ये कर दो, दूसरे ने बोला कोई 2 घंटे वहां चले जाओ, तीसरे ने बोला 5 घंटे वहां चले जाओ, और आपकी साधना की जो धज्जियां हुई हुई तो फिर आपको विनम्रतापूर्वक हर व्यक्ति को बोलना पड़ेगा गुरु जी अगर सेवा मेरी अथॉरिटी से आएगी तो मैं करूंगा है ना, और मेरा कुछ जब करना होता है आप मेरी अथॉरिटी से पूछिए। ठीक है ना, तो बड़ा सावधान रहना पड़ेगा इन चीजों में। कहीं कई बार क्या होता है कि हम लोग सेवाओं के मार्ग के चक्कर में सब सिस्टम भी किसी की साधना से भी वो हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। और कुछ सेवा सेवा तो आप किसी को भी कह करवा सकते हो किसी गुरु को, लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि कई बार मान लीजिए गुरु ने बुलाया जरा आप भी किस पीछे अथॉरिटी है बुला भैया बहुत जरूरी क्या सुना था ना पहले कह रहा हूँ जब पे लगे तो ये वो हो जाएगा नाम के प्रति गुरु के प्रति अपने चल जाएगा, तो जाए सुने उनकी बात पूरी सुने, शायद वो शाम के लिए कुछ कह रहे हो सुन लिया आपको लगता है कि कर सकते कर दिया, आपको लगता है कि इसी में समय बोल रहे हैं 2 घंटे में कहीं जाना है या ऐसे कुछ है जिसमें जब रहते तो वो बता सकते हैं कि आज पूरा दिन मेरा ऐसा शेड्यूल बिजी ऑफिस में टाइम नहीं मिलेगा घर आकर तो ये होता है जब मेरा रह जाता है, तो आप कहें तो बताइए क्या होंगे ठीक है अपना जब कर लूँ किसी को देख लो कुछ जा सकते ठीक है। बात तो ठीक है कि भगवान कहते हैं
देखा ये हो गया वो हो गया,
आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा मिचेर होना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि कई बार लोग दिखावा बहुत करते हैं, अगर उनके पास कुछ कम है तो इसे भी दिखाने चाहते हैं कि मैं एडवांस कर रहा हूं मटीरियली, तो गाड़ी लेंगे थोड़ी बड़ी गाड़ी फिर उसको निकाली फिर दूसरी गाड़ी फिर उसको निकाली फिर तीसरी गाड़ी ताकि दूसरे को लगे बेशक उसका कुछ हो नहीं रहा लेकिन दिखाना चाहते दुनिया, दुनिया तब मानती कि हाँ इसके पास कुछ है ये कुछ कर रहा है। लेकिन हम भक्ति में लगे और प्रयास करने करने का, और फिर शायद भगवान हमारे लिए अपनी योजनाओं के माध्यम से कुछ चाहते हैं कि ठीक है इसको मैं, क्योंकि पैसा संसार का जो पैसा है ये तो अपने एक बहुत बड़ा बर्डन है ना, जो आपने कमाया है कर्म का जो फल है वो बर्डन है, वो तो ले डूबेगा है ना, वो तो कहने के लगाना पड़ेगा आपको है ना। तो अगर भगवान हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और हमारे भौतिक अनर्थों को कम कर रहे हैं तो हमारे को अंदर से खुशी होनी चाहिए। लेकिन सोपर भौतिकतावादी लोग ये ठीक उस उन लोगों के समान है जिन्हें करना खुद तो कुछ नहीं करना है और दूसरे को करने भी नहीं देना चाहते। तो हमें लोग उनको ये सोचना चाहिए कि ये थोड़ी देर करेंगे और फिर चुप हो जाएंगे, तो हमें उनसे कुछ फर्क नहीं होना चाहिए। हाँ ये भी नहीं है कि आप जान मुझके दिखाओ कि हाँ तुम जिससे मैंने ये करा है पता तो नहीं क्या हो गया तो भक्ति भी नहीं आएंगे होगी है ना। तो उनको ये रखना चाहिए कि आप एडवांस कर रहे हैं, आप खुश भी हैं, जिससे आपको दुख भी नहीं हो रहा और आपका अब बोलो ना मैंने ये कम करा दूसरी जगह दर्शन कर दिए ये कर दिया वो कर दिया बोला तो नेगेटिव ना जाए मैसेज ठीक है। हरे कृष्ण श्री भगवान की निंदा करो हमारा।